पेश है समाचार कुमुद मिरानी के साथ। आज के मुख्य समाचारों में विक्टोरिया में कोरोना वायरस के नए मामले और वहां की सरकार आपात स्थिति बढ़ाने पर कर रही विचार। लिबरल पार्टी में एक और सशक्त सदस्य ने पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए नए सदस्य भर्ती करने के आरोप पर दिया अपना इस्तीफा। और अब लीजिए पेश है समाचार विस्तार के साथ। विक्टोरिया के प्रीमियर कोरोना वायरस महामारी को भविष्य के लिए भी काबू में रखने के लिए अगले 12 महीनों के लिए आपात स्थिति बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। विक्टोरिया में स्टेज 4 लॉकडाउन आधे रास्ते पर पहुंच चुका है, जिसमें रात के कर्फ्यू भी लागू हैं। वहां आज सोमवार के दिन कोरोना वायरस के मामले घटे हैं और अब 116 नए केस दर्ज हुए हैं, मगर विक्टोरिया में 15 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 430 हो गई है। देशभर में कोरोना वायरस से 500 लोगों की मौत हुई है। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज कहते हैं कि अस्पताल में भर्ती मरीजों और एज्ड केयर की वजह से विक्टोरिया में ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं।
Making sure that we get past this second wave and then we can start opening up, and it's at that point that many of these rules become even more important, because we've got more movement, we've got more people coming into contact with others, we've got venues open, we've got travel, we've got all those sorts of things.
न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी सिडनी में रहने वालों से ये आग्रह कर रही हैं कि वे कोविड-19 से बचकर ही रहें, क्योंकि उन इलाकों में सामुदायिक संक्रमण काफ़ी सक्रिय है। न्यू साउथ वेल्स में 3 नए कोविड-19 केस रिकॉर्ड हुए हैं। इनमें से 2 मामले होटल क्वारंटीन से संबंधित हैं, मगर एक मामला समुदाय में संपर्क से उठा है, जो कि चिंता का विषय है। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजक्लियान कहती हैं कि राज्य ने पिछले 24 घंटों में 20,000 टेस्ट किए हैं, यानी कुल 2 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं, मगर अभी भी कुछ लोग टेस्ट करवाने से कतराते हैं।
There are cultural concerns and differences in the way people come forward, and we just want to tell everybody not to worry. Please contact your local GP or a community leader if you're too worried about contacting public health directly, or too worried about going and getting tested directly. If you want some advice or information or just some counselling about how to get it done, please contact a community leader in your region.
फेडरल एज्ड केयर मंत्री ने कोविड-19 संबंधित संसदीय सुनवाई में नर्सिंग होम्स में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या न दे पाने के लिए क्षमा मांगी है। फ्रंट बेंचर श्री रिचर्ड कॉलबेक मानते हैं कि उनके पास ये संख्या तैयार होनी चाहिए थी, और पिछले हफ्ते ये आंकड़ा न दे पाने के लिए वे खुद को जिम्मेवार ठहराते हैं। विपक्षी नेता एंथनी ऑल्बनीजी ने संसद को बताया कि सरकार एज्ड केयर के लिए जिम्मेवार है, और उन्होंने मंत्री की योग्यता पर सवाल उठाया है।
And last Friday we saw frankly a minister appear before the COVID-19 committee who's just not up to this task. Just not up to it. I don't know what it takes to lose your job on the front bench of this government.
नेशनल सेनेटर ब्रिजिट मैकेंजी मांग कर रही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो सीमाएं बंद कर दी गई हैं, उसके लिए दूर दराज इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए देश भर में एक समान नियम बनाना चाहिए। आज क्वींसलैंड ने घोषणा कर दी कि न्यू साउथ वेल्स के साथ उसकी सीमा बंद किए जाने पर कृषि और कमर्शियल फिशिंग को मुक्ति दी जाएगी। फेडरल तथा राज्य सरकारें और टेरिटरीज के नेता एक राष्ट्रीय योजना बना रहे हैं, जिससे कि सीमाएं बंद होने के बावजूद किसान और अन्य कारिंदे सीमाएं लांग सकेंगे। सुश्री मैकेंजी कहती हैं,
We need a common sense and practical approach. It's what the National Party has been calling for over 8 weeks. We welcome a first step by Queensland, but we call on other premiers to get with the program and understand that our national economy is underpinned by the regions and we need to get on with doing business.
लिबरल पार्टी के एक सशक्त सदस्य को ब्रांच स्टैकिंग यानी कि पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए नए सदस्यों को भर्ती करने के लिए पार्टी छोड़ देनी पड़ी है. मार्कस बास्टियान इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं मगर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है. आरोप हैं कि करदाताओं के पैसे से निर्वाचित कर्मचारियों का इस्तेमाल अन्य नए एथनिक या बहुजातीय समुदाय के लोगों को भर्ती करने के लिए लगाया जा रहा है. असिस्टेंट ट्रेजरर माइकल सुकार ने इसमें लिप्त होने से बिल्कुल इनकार किया है. कुछ अन्य समाचारों में, क्राइस्टचर्च की अलनूर मस्जिद में धावा बोलकर दर्जनों को मारने वाले ऑस्ट्रेलियाई आतंकी को क्राइस्टचर्च में अदालत ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है. न्यूजीलैंड हाई कोर्ट ने उसके अपराधों के बारे में कई पीड़ितों की गवाही सुनी है. ब्रेंटन टैरेंट को गत वर्ष दो मस्जिदों में 51 लोगों की हत्या, 40 लोगों की हत्या का प्रयास और एक आतंकी हमले के लिए सजा सुनाई जा रही है. आज सोमवार के दिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य भागों से पीड़ित क्राइस्टचर्च हाई कोर्ट में एकत्र हुए. कई सौ लोगों की भीड़ कचहरी में शामिल थी और 7 ओवरफ्लो कमरों में भी लोग जमा हो गए. 15 देशों में कई सौ लोगों ने कार्रवाई के लाइव स्ट्रीम देखे. और अब भारत के समाचार सुनते हैं अनीता बरार के साथ.
भारत के समाचारों में, राजधानी दिल्ली से ISIS से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को उससे करीब 30 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है. ये जानकारी रविवार को अधिकारियों ने दी. एक अधिकारी ने बताया कि इसमें से आधा विस्फोटक छापेमारी के दौरान मोहम्मद मुस्तकीम खान के उत्तर प्रदेश के बलरामपुर स्थित घर से बरामद किया गया. वहाँ पर ISIS का एक झंडा भी बरामद हुआ. बलरामपुर जिले के बढ़िया भक्साई गांव निवासी मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ को दिल्ली पुलिस ने धौलाकुआं इलाके से शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. पुलिस का कहना है कि यूसुफ ISIS से जुड़ा हुआ है और उसके पास ID विस्फोटक बरामद किए गए हैं. और भारत में कांग्रेस के नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच पार्टी की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू हो चुकी है. बैठक से पहले सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी. फिलहाल अटकलों के दौर के बीच में राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग हो रही है. सोनिया गांधी अब तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं. और भारत में एक दिन में COVID-19 के 61,408 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 31 लाख से ऊपर हो चुके हैं. वहीं 836 और लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 57,542 हो चुका है. देश में अभी 7,10,771 मरीजों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और 23,38,035 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं.
ये अब एक नज़र डालते हैं मुद्रा दरों पर. इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर US के 71 सेंट्स के बराबर है और एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भारत के 53.62 रुपयों के बराबर है. और अंत में जाते जाते एक नज़र डालते हैं कल यानी मंगलवार के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुख्य शहरों के मौसम और तापमान पर. तो पर्थ में कल धूप ही धूप होगी. न्यूनतम तापमान वहाँ होगा 9 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 डिग्री. एडलेड में कल धूप होगी, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस, और मेलबर्न में कल एक आध बौछारें होंगी, न्यूनतम तापमान 5, अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, होबार्ट में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम 2 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, कैनबरा में भी कल आंशिक तौर पर बादल घिरे रहेंगे, न्यूनतम तापमान भाई वहाँ होगा -2 डिग्रीज और अधिकतम 12 डिग्री, सिडनी में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 7, अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस, ब्रिस्बेन में कल धूप होगी, न्यूनतम 8, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, और डार्विन में कल धूप ही धूप होगी, न्यूनतम 20, अधिकतम तापमान होगा 34 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।